जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला दूसरा अध्याय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्लोक संख्या 53 विराट हिरण्यगर्भः च कारणं च इति उपाधयः ईशस्य यत् त्रिभिः हीनं तुरीयं तत् प्रचक्षते विराट हिरण्य गर्भश्च कारणं चेत्युपाधयः ईशस्य यद् ईशस्य यत्र भीर्हीनं तुरीयं तत्प्रचक्षते विराढिरण्यगर्भश्च कारणं चेत्युपाधयः ईशस्य यत्र त्रिभिर्हीनं तुरीयं तत्प्रचक्षते जी थोड़े प्रिंटिंग में गलतियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है अभी जो है बीबीटी के कोई हैं क्या यहाँ पर? नहीं है। विराट विराट सृष्टि हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ सृष्टि च और कारणम कारण सृष्टि च तथा इति इस प्रकार उपाधयः विशिष्ट उपाधियां ईशस्य भगवान की यत वह जो इसको जरा ऊपर कीजिए श्लोक दिखाइए यह व्रत है यह त्रिभिर होना चाहिए हाँ ठीक है त्रिभिः ये तीन हीनम बिना तुरीयम चौथी तत् वह प्रचक्षते मानी जाती है अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां विराट, हिरण्यगर्भ तथा कारण हैं, किंतु वे इन तीन उपाधियों से परे अंततो गत्वा चतुर्थ आयाम तुरीय में रहते हैं। तात्पर्य। परम पूर्ण का घटनामय प्राकट्य विराट, हर वस्तु के तात्विक आत्मा हिरण्यगर्भ तथा कारण, कारण या कारण प्रकृति, ये उन पुरुषों की उपाधियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं, जो भौतिक सृष्टि के लिए उत्तरदायी हैं। दिव्य स्थिति इन उपाधियों से परे हैं, अतएव वह चतुर्थ आयाम की स्थिति कहलाती है। यह है श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, 11वें स्कंद के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक पर श्रील श्रीधर स्वामी द्वारा की गई टीका से लिया गया है। आप यहां पीछे आ सकते हैं, वहां खड़े होने के बजाय पीछे इस तरफ आ जाइए। कोई भक्त वहां भक्तों को ले आइए पीछे से। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अनेक वर्षों के बाद पुनः श्री वृंदावन धाम में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री गौरनिताय श्रील प्रभुपाद का दर्शन प्राप्त हो पाया और आप सबका संग भी प्राप्त हो पाया और आप सबके सामने श्री चैतन्य चरितामृत के कुछ बातें कहने का अवसर भी मिला। ये भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो प्रसंग ये चल रहा है कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का तात्विक परिचय दे रहे हैं बड़े विस्तार में। वो बतला रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण हैं। कृपया अपने फोन बंद कर दीजिए जिनका भी फोन बज रहा है। यहाँ कई वर्ष पहले जब कृष्ण हॉल में भागवत प्रवचन हुआ था तो प्रवचन के पहले मैंने बताया था कि जिनका फोन बजेगा क्लास में तो आपको 500 रुपये दान देना होगा। उस समय गौशाला में कोई तंगी चल रही थी, धन की आवश्यकता थी और मैंने गौशाला के एक भक्त को रसीद बुक के साथ बिठाया था क्योंकि मुझे पता था कि घोषणा के बावजूद किसी का फोन बजेगा और अच्छा खासा कलेक्शन हो गया। तो यदि आप अच्छी तरह से दान देना चाहते हैं तो फोन को मत बंद कीजिए। तो खैर, चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, अवतारी कृष्ण, अवतार नहीं। यद्यपि अवतार और अवतारी में भेद नहीं है फिर भी इस दृष्टि से अंतर किया जा सकता है कि अवतारी अर्थात श्री कृष्ण अवतारों के समस्त अवतारों के उद्गम हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जो निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण के शरीर का तेज है वही निराकार ब्रह्म श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का तेज है। उसी प्रकार से जो परमात्मा श्री कृष्ण के विस्तार हैं बल्कि अंश के अंश के अंश आदि हैं वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु के अंश हैं। फिर कविराज गोस्वामी भगवान नारायण की बात करते हैं। अब आइए थोड़ा सिंहावलोकन करें। सिंहावलोकन आप इस शब्द से परिचित है ना? जैसे सिंह चलता है तो बीच बीच में रुक के पीछे देखता है, फिर आराम से आगे चलता है, फिर थोड़े कदम बाद रुक के पीछे देखता है। तो उसी प्रकार से पुनरीक्षण हमें भी करना है, संक्षिप्त दोहराव उन विषयों का जो जिनकी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत कक्षा तो हफ्ते में एक बार हो रही है। अब पिछले हफ्ते में और उसके पिछले हफ्ते में कौन सी बातों की चर्चा हुई थी, हो सकता है हमें याद न हो, और कई भक्त यहाँ उस समय थे भी नहीं। तो इसलिए ऐसे पुनरीक्षण करना, संक्षिप्त दोहराव करना, ये भी थोड़ा लाभदायक होता है, ताकि हम आज के विषय को अच्छी तरह से समझ पाएं। और हर छात्र इस पद्धति से परिचित हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पिछला भाग भी देखना पड़ता है कि क्या पढ़ा था पहले। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ही नारायण है, मूल नारायण है। भगवान नारायण और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्री नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद, एक ही विग्रह आकार विभेद। नारायण और कृष्ण ये एक ही स्वरूप हैं, एक ही विग्रह हैं। विभेद या भेद है तो केवल आकृति में, आकार में, रूप में। श्री कृष्ण द्विभुज हैं, बांसुरी बजाते हैं, नारायण चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। और फिर इस बात को और सिद्ध करने के लिए, कुछ प्रमाण रखने के लिए, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्रह्मा जी की बात करते हैं। कल हम लोग वत्स वन गए थे, सारे ब्रह्मचारी मिलकर गए थे वहाँ वत्स वन में, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्रों को और उनके बछड़ों को चुरा लिया था और छुपा दिया था। तो जब ये ब्रह्म विमोहन लीला, तब ये जब ये लीला समाप्त हुई, जब ब्रह्मा जी को पता चला कि वास्तव में ये जो ग्वाल बाल है, गोपाल, ये साक्षात भगवान है, नारायण के भी उद्गम हैं, तो क्षमा याचना करने भगवान श्री कृष्ण के सामने आए और भगवान की सुंदर स्तुति भी उन्होंने की। तो दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ये सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी की पाई जाती है। तो अपने शब्दों में, फिर से फोन बज रहे हैं, आप कृपया चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए आपके जेब में, बटुए में जो फोन है देख लीजिए। तो ब्रह्मा जी को बड़ा पछतावा हुआ और वो आए श्री कृष्ण के सामने। अब श्री कृष्ण देखिए वृंदावन के भाव में है, उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकट तो कर दिया, एक साल तक उन्होंने प्रकट किया था, लेकिन अब जब ब्रह्मा जी क्षमा याचना करने आए तो भगवान कृष्ण इस तरह से बर्ताव कर रहे थे कि मानो उनको पता ही नहीं है कि ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, आप किनकी स्तुति कर रहे हैं, मैं तो ग्वाल बाल हूं, तो आप मुझे नारायण कह के संबोधित कर रहे हो, मैं तो वो नारायण नहीं हूं। तो ऐसे जब कहते हैं, ब्रह्मा जी उनका गुणगान करते हैं, भगवान का उनको नारायण कहते हैं, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हार पिता नारायण, आमे गोप तुम्ही कही छे आमार नंदन। कहते अरे ब्रह्मा, ये नारायण तो आपके पिता है, आपके पिता नारायण है, क्योंकि ब्रह्मा जी कह चुके हैं श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, मैंने आपके चरण कमलों में बहुत सारे बड़े बड़े अपराध किए, कृपया क्षमा कर दीजिए मुझे, क्योंकि मेरा जन्म आपके नाभि से हुआ था, कमल पुष्प के ऊपर। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे माता हैं, और इसलिए मैं आपका पुत्र हूँ। और माता पिता अपने बच्चों के अपराध को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो कृपया आप भी मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब ऐसे कृष्ण कहते हैं, अरे ब्रह्मा, तुम्हार पिता नारायण, मुझे क्यों पिता बुला रहे हो भाई? आपके पिता तो नारायण हैं और मैं आमी गोप, मैं तो गोप हूँ, ग्वाल बाल हूँ। तो फिर आप मुझे आपका मेरा पुत्र क्यों कह रहे हैं? तो ब्रह्मा जी भी भक्त हैं, अभी अच्छी तरह से समझ गए हैं, ब्रह्मांड के सबसे पहले दीक्षित भक्त हैं, सबसे पहले ब्राह्मण हैं, ब्रह्मांड के भीतर सबसे बड़े विद्वान हैं, और देखिए फिर भी भ्रमित हो गए श्री कृष्ण के सामने। कल हम वत्स वन में ये चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जैसे परम विद्वान भी भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का समन्वय नहीं कर पाए, क्योंकि उनके मन में कल्पना थी कि भगवान ये बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हैं, षडैश्वर्यों से संपन्न हैं। जब वृंदावन में श्री कृष्ण को लीला करते हुए देखा तो वो भ्रमित हो गए कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो ये माधुर्य और ऐश्वर्य का समन्वय जब ब्रह्मा जी नहीं कर पाते हैं तो साधारण व्यक्ति भले कैसे कर पाएंगे। तो फिर ब्रह्मा जी तो विद्वान हैं, तो कहते हैं, नहीं, मैं आपको प्रमाण दूंगा, मैं आपको ये साबित करके दूंगा कि आप ही नारायण हैं। और वो कहते हैं कि देखिए, आप ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं उनके आप उद्गम हैं और उनके आप आश्रय हैं, आप ही परमात्मा हैं, सारे प्राणियों के हृदय में आप विराजमान हैं। जिस प्रकार से मिट्टी या पृथ्वी से तरह तरह के मटके बनते हैं और फिर वो मटकों का जो मटके जब चूर चूर हो जाते हैं तो मिट्टी पुनः पृथ्वी में लौट के जाती है, तो इसी प्रकार से आपसे सब कुछ उत्पन्न होता है, आप में सब कुछ अंततः विलीन हो जाता है। नारायण शब्द का तात्पर्य है कृष्ण ये है कि नर अर्थात व्यक्ति या जीव या प्राणी और नार अर्थात उनसे उत्पन्न होने वाले या उनके संबंध में, अयन अर्थात आश्रय। तो नारायण शब्द, नार और अयन, तो नारायण शब्द का अर्थ है कि समस्त जीवों के आश्रय। और क्योंकि आप समस्त जीवों के आश्रय हैं, उनके उद्गम हैं, इसलिए आप ही मूल नारायण हैं। तो ये पहला सबूत या पहला प्रमाण ब्रह्मा जी ने दिया, किनको? कृष्ण को। कृष्ण को ये बतलाने के लिए कि आप ही नारायण हैं। वृंदावन के भाव में जब श्री कृष्ण रहते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है, देखिए कि न केवल ब्रजवासी जानते नहीं हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं जानते हैं कि वो भगवान है। क्योंकि भगवान जब वृंदावन में लीला करते हैं तो केवल नकल नहीं करते हैं, नाटक नहीं करते हैं। जब माता यशोदा ने उनको बांध दिया उखल से और उनकी आंखें भय के मारे कांपने लगी, अश्रुधारा होने लगी आंखों से, तो भय की नकल या भय का नाटक नहीं कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, वास्तव में अपनी माता से डर रहे थे, क्योंकि वो वात्सल्य भाव का आनंद लेना चाहते थे, वात्सल्य भाव के स्वाद को चखना चाहते थे, जो कि केवल वृंदावन में इस प्रकार से संभव है। हाँ, कभी कभी अपने भगवत्ता की पहचान भगवान को हो जाती है अपनी लीला की आवश्यकता के अनुसार। तो तो भगवान की लीला शक्ति कभी कभी भगवान को प्रेरित करती है स्वज्ञान से कि भाई आप भगवान हो, तब भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं। परंतु जब ऐसे ऐश्वर्य या शक्ति को प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है तब भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। यदि इस प्रकार की दिव्य विस्मृति न होती तो भगवान वृंदावन के लीलाओं का स्वाद पूरी तरह से नहीं ले पाते। तो इसलिए कभी कभी भगवान को भी अपने भगवत्ता का याद दिलाना पड़ता है वृंदावन में। वृंदावन के बाहर तो भगवान को सदैव ज्ञान रहता है। अरे दूसरी बार फिर और फोन बज रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ऐसे हुआ, जब वो गया गए थे और उनकी दीक्षा हो गई ईश्वरपुरी के द्वारा, तो इतने वो भाव विभोर हो गए कि सीधे वृंदावन की ओर चल पड़े और आकाशवाणी आई कि हे प्रभु, आपको वृंदावन जाने का समय नहीं आया है, आपको यहाँ जीवों का उद्धार करना है, इसलिए आप कृपया अब वृंदावन मत जाइए। तब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि अरे हाँ, मैं तो भगवान हूँ और मैंने यहाँ अवतार लिया है किसी विशेष उद्देश्य से, तो पहले मुझे उद्देश्य पूर्ण करना है। तो अपने आप को संभाल लिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो खैर, ब्रह्मा जी अभी याद दिला रहे हैं श्री कृष्ण को कि वो स्वयं नारायण है। एक प्रमाण तो दे चुके, फिर दूसरा प्रमाण ब्रह्मा जी देने जा रहे हैं और वो कहते हैं कि हे भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भीतर जितने भी जीव हैं उनके पालक और रक्षक आपके विभिन्न अवतार हैं। आपके अवतार अनगिनत हैं, जिनमें पुरुष अवतार भी हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। तो ये सब आपके अंश हैं और आप इन्हीं की रक्षा करते हैं, क्योंकि आपके जो ऐश्वर्य हैं, आपकी जो शक्तियां हैं, आपके अवतारों से कहीं अधिक हैं। और क्योंकि आप जीवों के रक्षकों के रक्षक हैं, जीवों के पालन करने वाले अवतारों के को आप पालन करते हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं। अयन नार शब्द का अर्थ तो ब्रह्मा जी ने पहले से बताया है, जो जितने भी समस्त जीव हैं नार। अयन का और एक अर्थ है शरण देने वाले। पहला अर्थ क्या था? शरण या आश्रय। अब दूसरा अर्थ अयन का है कि जो शरण प्रदान करते हैं। तो आप शरण प्रदान करने वालों के आश्रय या शरण हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर बातें ऐसे कहते हैं, नारेर अयन यते करह पालन, अतएव हो तुम्हें मूल नारायण। इस प्रकार से वास्तव में आप नारायण हैं। और ये तो केवल दूसरा प्रमाण था, अब मैं तीसरा प्रमाण दूंगा हे कृष्ण। ब्रह्मा जी कहते हैं, वो कहते हैं कि जितने भी जीव यहां पर भौतिक सृष्टि में हैं, वो अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। कोई अच्छे कर्म करते हैं, कोई बुरे कर्म करते हैं, और इन कर्मों का फल सबको मिलता है। और ये कर्मों का फल कैसे मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि एक साक्षी होने चाहिए जो इन सारे कर्मों को देख लें, और देखने के बाद फिर निर्णय लें कि इस कर्म का इस प्रकार का फल मिलना चाहिए। आप ही वो साक्षी हैं हे कृष्ण, जो कि सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। और आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप त्रैकालिक कर्मों के साक्षी हैं जीवों के, त्रैकालिक अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य। प्रत्येक जीव ने जो भूतकाल में क्या किया है, वर्तमान काल में वो क्या कर रहे हैं,
और भविष्य काल में वो क्या करने जाएंगे या करेंगे, इस सब का ज्ञान आपको है। जीवों के त्रैकालिक कर्मों के आप प्रत्यक्ष साक्षी हैं, क्योंकि आप उनके हृदय में बैठे हुए हैं। भगवद गीता में भी भगवान ऐसी ही बात करते हैं ना, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो पुरुषः देहेस्मिन् पुरुषः परः, कि इस हृदय में ये जो आत्मा है, इस आत्मा के अतिरिक्त एक और पुरुष है जो वास्तव में पुरुष है, जिनको परमात्मा कहते हैं। और ये परमात्मा अंतर्यामी ये क्या करते हैं हृदय में बैठ के, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता ये महेश्वर हैं और ये साक्षी हैं। उपद्रष्टा अनुमंता वो हमारे कार्यों के लिए अनुमति देते हैं, वो हमारे भर्ता हैं, स्वामी हैं, भोक्ता है वो संपूर्ण जगत के। तो ऐसे परमात्मा आप ही हैं, आप ही साक्षी हैं, आप सब कुछ जानते हैं और आपके दृष्टिपात से इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है और संहार भी होता है, क्योंकि ये आपके पर्यवेक्षण में चल रहा है, आपके देखरेख में सब कुछ चल रहा है। और आप सारे प्राणियों के गतिविधियों को जानते हैं, उनके भ्रमण को पहचानते हैं और ये सब आपके निर्देशन में हो रहा है, इसलिए आप नारायण हैं। क्यों? नार समस्त जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, और अयन को और एक अर्थ होता है गमन या गति या भ्रमण। तो सारे जीवात्माओं के भ्रमण को आप जानते हैं, आपके निर्देशन में ये सब कुछ हो रहा है। और ये तो भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, कौन सा श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शिर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानाम यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में विराजमान होकर सबके भ्रमण का देखरेख करते हैं, उनके निर्देशन में सब कुछ हो रहा है। नारेर अयन जाते करह दर्शन ताओ हाउ तुमी मूल नारायण, क्योंकि सारे प्राणियों के गतिविधियों का आप देखभाल करते हैं, देखरेख करते हैं, इसलिए आप मूल नारायण हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी तीन प्रमाण श्री कृष्ण के साथ के सामने रखते हैं। अब श्री कृष्ण पे ग्वाल बाल हैं वृंदावन में, उनको क्या पता ये सब नारायण कौन है, और ये सब इतना बड़े बड़े दार्शनिक बातें थोड़ी ना उनको पता होती हैं। वो तो गायों को चराते हैं और क्रीड़ा करते हैं जंगल में जाके, गोपियों के साथ में रमण करते हैं। तो कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी, आप जो कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसी बातें आप करते हो। मैं नारायण? भाई नारायण कौन होता है? जीव हृदि, जीवों के हृदय में स्थित होने वाले व्यक्ति को नारायण कहते हैं। जले वैश्य, जो कारण सागर में शयन करते हैं, उनको नारायण कहते हैं। और मैं कहां यहां, वो कहां भगवान नारायण, और मैं यहां गोप वृंदावन में रहने वाला, तो आप किस तरह से मुझे नारायण बुला रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने जो बात कही है ना, बिल्कुल सही है। देखिए, ये तीन पुरुष अवतार होते हैं, ये जो नारायण हैं, ये आपके अंश हैं। सृष्टि का सृजन करने वाले ये तीन पुरुष हैं, उनमें से सबसे पहले जो होते हैं महाविष्णु, और ये महाविष्णु नारायण के अंश हैं और नारायण आपके अंश हैं। इस तरह से ये संपूर्ण सृष्टि चलती है। तो ये तीन पुरुष महाविष्णु, या जिनको कारणोदकशायी विष्णु कहते हैं, या गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु, तीन प्रकार के समुद्र के जल में शयन करने वाले ये तीन विष्णु जो हैं, ये माया के सहयोग से सृष्टि का निर्माण करते हैं। महाविष्णु किस जल में शयन करते हैं? कारण जल में, कारण सागर में। गर्भोदकशायी विष्णु किस जल में शयन करते हैं? गर्भक सागर में, गर्भोदक, उदक अर्थात जल। और क्षीरोदकशायी विष्णु किस जल में शयन करते हैं? क्षीर के सागर में, दूध के सागर में शयन करते हैं। तो ये तीनों पुरुष अवतार जो हैं, ये यहाँ पर सृष्टि में माया के संयोग से सृष्टि का सृजन करते हैं, और ये अंतर्यामी हैं संपूर्ण सृष्टि के, ब्रह्मा जी कहते हैं। जो महाविष्णु है ये संपूर्ण ब्रह्मांडों के या संपूर्ण सृष्टि के अंतर्यामी हैं। जो गर्भोदकशायी विष्णु हैं वो किसी एक ब्रह्मांड के भीतर संग्रहित जितने भी जीव हैं, जीव समूह, उनके परमात्मा है, उनके अंतर्यामी हैं। और जो क्षीरोदकशायी विष्णु है वो हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी के हृदय में अंतर्यामी या परमात्मा है। तो ये इस प्रकार ये सारे जो परमा पुरुष अवतार हैं माया के साथ में रहते हैं, माया का संबंध उनका है। और आगे चल के कविराज गोस्वामी बतलाने वाले हैं एक महत्वपूर्ण बात कि यद्यपि ये तीन पुरुष अवतार माया के संबंध में रह के सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर भी वो माया का स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि ये विष्णु तत्व हैं। शिवजी स्पर्श करते हैं, इसलिए भगवान शिव विष्णु तत्व की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं। परंतु ये तीन पुरुष अवतार माया का संबंध करने के बाद भी स्पर्श नहीं करते हैं, वो सदैव अपने दिव्य अवस्था में रहते हैं। फिर भी क्योंकि माया के साथ उनका संबंध होता है तो वो तीन प्रकार की उपाधियों को स्वीकार करते हैं जो केवल भौतिक सृष्टि में होता है। तो इन तीन उपाधियों का उल्लेख आज के श्लोक में किया गया है, विराट, हिरण्यगर्भ और कारण। तो विराट का अर्थ होता है जो एक स्थूल उपाधि है, हिरण्यगर्भ अर्थात सूक्ष्म उपाधि, और कारण अर्थात माया। तो इस प्रकार से ये तीन उपाधियों से युक्त रहते हैं ये पुरुष अवतार। परंतु हे कृष्ण, आप इन उपाधियों से युक्त नहीं हैं, आप इन उपाधियों के परे हैं, इन तीन अवस्थाओं से, इन तीन उपाधियों से परे हैं आप, इसलिए आप हैं तुरिया, तुरीय। यहाँ आज के श्लोक में तुरीय शब्द आता है ना, तुरीय का अर्थ है चौथा। तो आप चौथे स्तर में हैं, आप न तो आपका संबंध न तो विराट से है, न हिरण्यगर्भ से है, न कारण से है, क्योंकि आप इन तीनों के परे हैं। आप पूरी तरह से दिव्य अवस्था में हैं। देखिए पुरुष अवतार भी दिव्य अवस्था में है, परंतु ये उपाधि स्वीकार करते हैं, परंतु श्री कृष्ण इन उपाधियों को भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 85 में माता देवकी श्री कृष्ण से कहती हैं, जब वसुदेव और देवकी के सामने श्री कृष्ण ने उनके 6 पुत्र लाके रखे थे और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पुत्र ने ऐसे कैसे कर दिया, तो उस समय देवकी माता कहती है, यस्यांशांश अंश भागेन विश्वोत्पत्ति लयोदयः भवन्ति किलो विश्वात्मन त्वं तं त्वाद्याहं गतिं गत। वो कहती हैं कि हे विश्व के आत्मा, अपने पुत्र का संबोधन इस प्रकार से करती है क्योंकि अब उनका जो मीठा वात्सल्य भाव शिथिल हो चुका है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ऐसे अद्भुत कार्य कर दिखाए तो अभी वो वात्सल्य भाव कमजोर होकर अब वो अपने पुत्र को भगवान मान रही हैं और कहती हैं कि हे विश्वात्मन, संपूर्ण विश्व के आत्मा, ये जो विश्व की उत्पत्ति होती है, लय होता है और इसका पालन होता है, यस्य अंश 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 भागेन, ये आप स्वयं नहीं करते हैं, आपके अंश के अंश के अंश के भाग द्वारा ये सृष्टि का लय, सृष्टि का सृजन और सृष्टि का पालन होता है, और इसलिए मैं आपके शरण में अभी आ रही हूं। यस्य अंश 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 भागेन, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना, उसी बात को यहां पर देवकी माता भी दोहरा रही हैं। मूल अवतारी कृष्ण वृंदावन, गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, उनके प्रथम विस्तार हैं बलराम जी, बलराम जी से फिर प्रकट होते हैं संकर्षण, संकर्षण से प्रकट होते हैं आगे चल के, वैसे तो क्रम है, फिर नारायण आते हैं, फिर नारायण से महाविष्णु आते हैं, इस प्रकार से ये एक विस्तारों का क्रम है। इसलिए माता देवी की यहाँ कहती हैं कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन, लय और पालन आप स्वयं नहीं करते, आपका कुछ लेना देना नहीं है इस सृष्टि से। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण केवल गोलोक वृंदावन में रह के लीला करते हैं अपने, वो गायों को चराने जाते हैं, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं, माता यशोदा नंद बाबा को आनंद देते हैं, बस यही काम है श्री कृष्ण का वृंदावन में, इस भौतिक सृष्टि से उनका कुछ लेना देना नहीं है। परंतु जब सृष्टि का सृजन पालन आदि करना होता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने विस्तारों को भेज देते हैं। यदि ऐसा यहां सबके लिए होता कितना अच्छा होता, नहीं? जो दफ्तर में जाते हैं नौकरी के लिए अपने आप को विस्तार कर देते, भाई आप चले जाओ दफ्तर में, यहाँ घर में बैठ के मैं आराम करूंगा, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे कर सकते हैं। तो श्रीधर स्वामी यहाँ बतलाते हैं, जिनका जिनकी बात यहाँ आज के तात्पर्य में भी हुई है ना, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तुरिया शब्द के और भी अर्थ हैं। तुरीय, पहला अर्थ यहां ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, वो क्या है? श्री कृष्ण चौथे वर्ग के हैं। किस प्रकार से? क्योंकि वो इन तीन उपाधियों से परे हैं। कौन से तीन उपाधियां? विराट, हिरण्यगर्भ और कारण, इसलिए वो तुरीय हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं और एक कारण है उनको तुरीय कहने के लिए, और वो ये है कि श्री कृष्ण गुणातीत हैं। तीन गुण जो हैं सत्व, रजस, तमस, इनसे परे हैं। और एक अर्थ श्रीधर स्वामी बताते हैं, या वीर राघव आचार्य उस टीका में, उस तात्पर्य में बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तुरीय अवस्था में इसलिए भी हैं क्योंकि वो चेतना के तीन स्तरों के परे हैं। कौन से हैं वो तीन स्तर चेतना के? जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। हम इन तीन चेतनाओं के स्तरों से परिचित हैं, आशा करते हैं तीसरे स्तर का लाभ अभी यहाँ कोई नहीं ले रहे हैं। सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद, स्वप्न अर्थात जिस स्वप्न के, जिस निद्रा की अवस्था में हम स्वप्न देखते हैं, और जागृति अर्थात हम जगे हुए हैं। जागृत अवस्था में हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारे स्थूल शरीर दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। स्वप्न की अवस्था में स्थूल शरीर निष्क्रिय रहता है परंतु सूक्ष्म शरीर क्रियाशील रहता है, और सुषुप्ति की अवस्था में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही निष्क्रिय रहते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी सब सुबह उठते हैं, हमें लगता है कि थकावट दूर नहीं हुई, क्योंकि अभी तक सुषुप्ति ठीक से हुई नहीं। कभी कभी लगता है कि इतने सपने देख लिए हमने, इसलिए मन थोड़ा विचलित सा है, मन ताजा नहीं लग रहा है। तो इन तीन स्तरों के परे हैं तुरिया, चौथी अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था। और ये जो तुरिया की अवस्था है, आध्यात्मिक अवस्था है, ये इन तीनों चेतना के अवस्थाओं का आधार है। इस तुरिया के अवस्था पर ये आधारित हैं, ये जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण सदैव तुरिया की अवस्था में रहते हैं, अर्थात दिव्य अवस्था में। इसलिए जब भगवान निद्रा का लाभ लेते हैं तो उनकी निद्रा हमारे निद्रा की तरह नहीं है। हम जब सो जाते हैं तो बस सो जाते हैं, हम तमोगुण में रहते हैं गहरी नींद के समय। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब सो रहे होते हैं, उनके पुरुष अवतार भी जब योग निद्रा में होते हैं, तो उनकी चेतना ठीक रहती है, दिव्य अवस्था में ही रहती है। इसलिए श्री कृष्ण की तुरिया अवस्था का वर्णन यहाँ भी किया गया है। तो ऐसे तुरिया, भगवान श्री कृष्ण की तुरीय अवस्था का वर्णन इस तरह से हुआ है। तो अब यहाँ समय समाप्त हो गया, कुछ प्रश्न यदि आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। विषय यहाँ थोड़ा कठिन है, ये विराट और हिरण्यगर्भ आदि इन सब चीज़ों की सृष्टि के सृजन के बारे में जो विषय हैं, इनको समझना आसान नहीं है। फिर भी जितना हो सके जैसे हम समझने का प्रयास करेंगे प्रभुपाद जी के कृपा से, हमें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ जी, अवतार। अच्छा, प्रश्न ये है कि ऐसे बताया जाता है कि हर अवतार विष्णु ही लेते हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि और ये आगे चर्चा होगी भी शायद, आगे चल के शायद, जहाँ तक मुझे याद है, आगे चल के भी इस विषय का उल्लेख होगा। ये कहना भी गलत नहीं है कि सारे अवतार विष्णु से आते हैं, क्योंकि जितने भी अवतार हैं वो अंततः क्षीरोदकशायी विष्णु के माध्यम से यहाँ पर प्रकट होते हैं। इसलिए ये कहना भी गलत नहीं है कि ये सारे अवतार विष्णु से प्रकट होते हैं। और वैसे भगवान विष्णु और कृष्ण में तो कोई अंतर नहीं है, एक ही विग्रह है, केवल आकार में विभेद है। हाँ जी, इधर माइक है क्या? एक आपका प्रश्न है कि आपको ये पता नहीं था पहले कि कृष्ण भगवान हैं, तो ऐसा क्यों है कि लोग मानते हैं कि देवी देवता भी सारे भगवान हैं? क्योंकि भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को वो परंपरागत अभी तक सीख नहीं पाए हैं। तो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत तो स्पष्ट है, तो जैसे हम ये ज्ञान पाएंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बस ऐसे कक्षाओं में आते रहना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना है। हाँ जी, प्रश्न ये है कि हिरण्यगर्भ शब्द का प्रयोग यहां किया गया है तो इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि हिरण्य अर्थात सोना, सुवर्ण, स्वर्ण, और अंड अर्थात अंडा। तो हिरण्यगर्भ के कई अर्थ हो सकते हैं। हिरण्यगर्भ गर्भोदकशायी विष्णु हैं, और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी भी हैं, हिरण्यगर्भ सूर्यदेव भी हैं मार्तंड, क्योंकि वो भी सृष्टि के पालन आदि में संहार में कार्यरत रहते हैं। तो ये है हिरण्यगर्भ संक्षेप, क्योंकि ये सब चमकता हुआ है ना, तेजस्वी है ये, जब इसका सृजन होता है तो तेजस्वी होता है, इसके कारण ये हिरण्य कहलाता है। ठीक है, हाँ थोड़ा जोर से बोलना होगा आपको। सपने अच्छे सोए हुए आदमी, अच्छे सोए हुए आदमी को क्या करना चाहिए? मैं समझ नहीं पाया ठीक से। हरे कृष्ण जप करो, हरे कृष्ण। देखो सब बैठते हैं, जप करते करते सो जाते हैं ना, तो अच्छी तरह से जप करो, मन शांत रहेगा ना, फिर जाके नींद अच्छी आएगी। जो भी दिन के तरह तरह के विचार आते हैं मन में ना, ये इसने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, ये मुझे ऐसे कह दिया, जप करने से हृदय धुल जाएगा, तो ऐसे साफ हृदय से फिर आराम से नींद आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत समय हो गया, प्रसाद का समय भी हुआ। हाँ जी, हाँ जी, एक प्रश्न कर लो।
हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, अभी आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की जो शक्तियां हैं वो मतलब नारायण से भी जो है ज्यादा पावरफुल हैं, मतलब इसको कैसे समझे?
इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण जिस रूप को स्वीकार करते हैं उस रूप के कोई कार्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, तो उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जितना ऐश्वर्य चाहिए, जितनी शक्ति चाहिए, उतना वो स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से कहा गया है ये, वो प्राकट्य उतना ही कराते हैं जितना कि आवश्यक है उस रूप के लिए। ठीक है, यहाँ अंतिम प्रश्न यहाँ पे।
हरे कृष्ण महाराज, वेरी नाइस क्लास, बहुत आनंद आया। महाराज, आपने बताया कि स्वयं भगवान को पता नहीं होता है कि वो भगवान है, तो
केवल वृंदावन में,
केवल वृंदावन में, हाँ, तब उनकी जो शक्तियाँ जो भगवान को ये भुला देती हैं, तो फिर भगवान कैसे रिलेट कर पाते वो शक्ति से या अपने आप की ओरिजिनल अवस्था से?
भगवान की शक्तियाँ भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं, बिल्कुल अलर्ट सक्षम रहती हैं। जैसे जैसे वो देखती हैं कि अभी लीला के लिए ये आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान होना कृष्ण के लिए आवश्यक है, तो तुरंत उनको ज्ञान दे देती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का पोषण होता है, उनको और मधुर किया जाता है।
सो इज इट लाइक ए सेक्रेटरियल वर्क? इज इट लाइक ए सेक्रेटरियल वर्क?
नहीं, सेक्रेटरियल वर्क, हाँ समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, परंतु ये सहायक है। जितने भी शक्तियां हैं श्री कृष्ण की लीला में सारे सहायक हैं। ठीक है, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।
हाँ एक अच्छा, आप सबसे निवेदन है, देखिए जब आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं ना, भागवत प्रवचन हो या भगवत गीता प्रवचन हो, पहली बात तो मोबाइल फोन बजने नहीं चाहिए, और जब तक प्रवक्ता बोल रहे हैं बात नहीं करनी चाहिए और देखिए कितना आवाज आ रहा है। और तीसरी बात एक निवेदन है कि प्रवचन के बाद तालियां न बजाएं आप, ठीक है? जैसे बाहर की दुनिया में लोग ताली बजाते हैं ना, ताली बजाइए ताली बजाइए, तो कुछ ठीक नहीं लगता। और दूसरी बात प्रवक्ता का अहंकार भी बढ़ जाता है।
हरे कृष्ण महाराज।
हाँ
महाराज, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे प्रहलाद महाराज थे हर जगह बता रहे हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए, तो प्रहलाद महाराज भी मतलब असुर परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, फिर भी वो इतने बड़े भक्त बने भगवान की और बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, क्वाहम राजा प्रभवई शतमोदी के जाता सर तर कुले तवानुकंपा ना ब्राह्मणो न वेयस्य न वेरमाया। ये बताते हैं प्रहलाद महाराज हमें बता रहे हैं कि मतलब जो आपने ब्रह्मा जी पर और जो रमे अर्थात लक्ष्मी जी हैं उन पर भी अपना इस कमल जैसा हाथ नहीं रखा और आपने मेरे पर रख दिया, पर आजकल वो तो असुर परिवार में थे फिर भी वो भगवान की भक्ति में इतने निपुण हो गए, पर हम तो चाहे ब्राह्मण परिवार में भी हों फिर भी हम बॉसानुबॉस बनना चाहते हैं, ये भावना कैसे हटे?
अभी जो कर रहे हैं वही करते रहना, बस सब ठीक हो जाएगा। ऐसे श्लोकों को कंठस्थ करते रहो, ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भक्तों के संग में रहो और सेवा करो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। घोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।